ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण।
हिंदी का ले
लीजिए, वो क्या है?
हिंदी भागवत दे
दीजिए। मेरे मोबाइल में है।
यहाँ क्लास का होगा तो आज आप जानते हो मानसन का तिरुभाव स्थिति है, तो शुरू में वे चर्चा करेंगे ईश्वरपुरी के विषय में, फिर भागवतम का श्लोक लेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाख्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपाकरः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां सरायतां सागरा रघुनाथान्वितं तं सुदेवं सद्वैतां सो श्रीराधा कृपापदं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपे सप्ता कन्या राधे वाचा कल्पातर्वेश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत। तो क्लास का श्लोक तो है सातवें से करेंगे तीसरे अध्याय से, पर उसकी चर्चा करने से पहले आज एक महान संत का तिरुभाव स्थिति है। क्या है उनका नाम, तो उनके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हमारा भाग्य है कि हमें महान संतों के तिरुभाव और आविर्भाव दोनों दिनों में उनकी लीला सेवा का श्रवण कर सकते हो। तो तिरुभाव का अर्थ है जब कोई महान संत अप्रकट होता है, और आविर्भाव का अर्थ है क्योंकि महान संत प्रकट होता है। तो जो वैष्णव हैं वो तिरुभाव को भी मनाते हैं और आविर्भाव को भी। और वो कैसे मनाते हैं, उनके जीवन के जो कार्य थे उनकी चर्चा करके। तो ईश्वरपुरी कौन थे? ईश्वरपुरी माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे। माधवेन्द्रपुरी बहुत ही ऊँची कोटि के वैष्णव थे, और वो 24 घंटे जुड़े रहते थे भगवान की सेवा में, और कभी किसी से उन्होंने कुछ नहीं मांगा। अगर किसी ने कुछ दे दिया तो खाते थे, और किसी ने नहीं दिया तो भूखे रहते थे। और लगभग 24 घंटे वो जुड़े रहते थे भगवान की सेवा में। बाद में पूरी ने गोवर्धन परिक्रमा समाप्त की थी, जबकि बहुत खूबसूरत ग्वाले ने आकर उन्हें दूध पहुंचाया और इसी बालक ने सपने में आकर माधवेन बुरी से क्या कहा, एक मूर्ति डबी हुई है तो वहाँ से निकाल कर इसकी स्थापना करो। और फिर माधवेन्द्रपुरी ने प्रसिद्ध गोपाल विग्रह का इसकी स्थापना की, वो विग्रह आज नद द्वारा में है। तो माधवेन्द्रपुरी थे बहुत ऊँचे कोटि के भक्त और भगवान ने उन्हें तीन अलग अवस्थाओं में हृदय से ज्ञान दिया था। पहली बार भगवान ने कहा, पहली बार उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से इतना खुश हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी स्थापना करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उस समय मुसलमानों का राज्य था और कई मंदिर नष्ट हो गए थे, कईयों की मूर्ति उठाकर वो ले गए जयपुर और कईयों की मूर्तियों को पुजारियों ने दबा कर छुपा दिया। तो माधवेन्द्रपुरी का भगवान ने आए अरे ज़्यादा सपने में कि तुम जाके इसकी स्थापना करो। फिर दूसरी बार दो साल माधवेन्द्रपुरी ने बड़ी सेव सावधानी से आचार्य विग्रह की सेवा की और माधवेन्द्रपुरी रात को मूर्तियों को सुलाने के बाद खुद सोने जाते थे, अंदाजा लगाओ। और फिर माधवेन्द्रपुरी को आदेश दिया था चंदन लेकर आओ और जो वो चंदन ला रहे थे भगवान ने क्या कहा, इतनी दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं गोपीनाथ विग्रह को लगा दो। तो माधवेन्द्रपुरी बहुत ही ऊँची कोटि के भक्त है और अद्वैताचार्य भी उनके शिष्य थे। तो माधवेन्द्रपुरी के कई भक्त थे, उनमें एक थे रामचंद्रपुरी और एक दूसरे थे ईश्वरपुरी। माधवेन्द्रपुरी रामचंद्रपुरी जो थे उन्हें वैष्णव में दोष लगाने में बड़ा आनंद आता था। उदाहरण के लिए जब कोई सन्यासी आता था तो वो बड़े उत्साह से उन्हें खिलाते थे, जो पूजा सन्यासी कहते थे नहीं नहीं हमें सन्यास के लिए आए, हमें इतना नहीं खाना चाहिए। तो वो कहते थे ये तो महाप्रसाद है, ये अपमान हो जाएगा। और जब वो खा लेते थे क्या करते थे, कहते थे देखो ढोंगी सन्यासी को गृहस्थ से भी ज़्यादा खाते हैं। तो रामचंद्रपुरी को आनंद आता था भक्त सन्यासियों में कमजोरी निकालकर। और ईश्वरपुरी का जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में और ईश्वरपुरी बहुत ही विनम्र थे, बड़े हम्बल, सबको आदर देते थे। वो कहते थे मैं जन्म हुआ ब्राह्मण खानदान में पर मैं हूँ सबसे पतित। ये है वैष्णव का लक्षण कि उन्हें गुण हो भी तो भी वो क्या सोचते हैं, मैं सबसे पतित हूँ। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं आप अवतारित हुए हो पतितों के उद्धार के लिए और सब पतितों में सबसे ज़्यादा पतित कौन है, मैं हूँ। यह है वैष्णव का भाव। तो ईश्वरपुरी के हृदय में भी यही भाव था कि वो सबसे गिरे हुए हैं और ईश्वरपुरी ने अपने गुरु माधवेन्द्रपुरी की बहुत विनम्रता से सेवा की। माधवेन्द्रपुरी के अंतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य बहुत कमजोर था, वो चल भी नहीं सकते थे। तो माधवेन्द्रपुरी ईश्वरपुरी अपने गुरु माधवेन्द्रपुरी के मन को साफ करते थे, उनको शेर में उठा कर ले जाते थे तो माधवपुरी इतने प्रसन्न थे ईश्वरपुरी की सेवा से कि उन्होंने एक वर दिया कि तुम सारे विश्व में धर्म का प्रचार करोगे, जो कि ईश्वरपुरी ने किया। किसके माध्यम से? चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, प्रभुपद भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर भक्तिविनोद के माध्यम से। तो ईश्वरपुरी बड़ी विनम्रता के साथ वैष्णव के साथ संबंध रखते थे और उन्होंने हर प्रकार की तुच्छ सेवा की गुरु के लिए। रामचंद्रपुरी जैसे हमने कहा, वो थे फॉल फाइंडर, उन्हें आनंद आता था भक्त बहनों के शिकार का। तो रामचंद्रपुरी क्योंकि बड़े विनम्र भक्त थे, जो बूढ़े थे, तो वो कहते थे मेरा क्या दुर्भाग्य है कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। तो एक रूप से कह सकते हो मेरा जीवन असफल है। तो रामचंद्रपुरी इसकी आदत थी भक्तों सन्यासी में नुक्स निकालने की। तो रामचंद्रपुरी गुरु को शिक्षा देने लगा, आप कहते हो आपने भगवत प्रेम अनुकूल नहीं किया तो ब्रह्मांड का चिंतन क्यों नहीं करते। जब उसे उसके गुरु ने सुना कि इस राय को, गुरु ने कहा चले जाओ भाई नजरों से दूर, क्योंकि तुम्हें देखते हो श्री त्यागूंगा तो जीवन असफल होगा। तो ये था रामचंद्रपुरी का व्यवहार। और ईश्वरपुरी जब उनके गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था वगैरह, वो दिन रात हरिनाम कर रहे थे, वो कृष्ण कथा की चर्चा कर रहे थे, कृष्ण लीला की चर्चा। तो उनके गुरु जो है खुद नहीं कर सके क्योंकि बहुत बीमार थे, कमजोर थे, पर ईश्वरपुरी जानते हुए उन्होंने क्या किया, हरिनाम का जाप और कृष्ण लीला की चर्चा। तो ईश्वरपुरी का आज तिरुभाव तिथि है और ईश्वरपुरी थे चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु जी। ऐसे देखा जाए महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनको गुरु लेने की क्या आवश्यकता। देखा जाए अद्वैत आचार्य जिन्होंने प्रार्थना की थी कि आप स्वयं प्रकट हो जाओ भगवान, और अद्वैत आचार्य भी खुद भी उद्धार कर सकते थे लोगों का, तो वो प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की भगवान आप प्रकट हो, और भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ईश्वरपुरी का उदाहरण दिया जाता है विनम्रता के विषय में और किस प्रकार से उन्होंने गुरु की सेवा की। और जब गुरु खुद जाप नहीं कर पा रहे थे तो वो हरिनाम का जाप करते थे और कृष्ण लीला की कथा। और हालांकि वो ब्राह्मण खानदान में उनका जन्म हुआ था, वो अपने आप को क्या कहते थे, मैं तो सबसे पतित हूँ। आज उनका तिरुभाव तिथि है, तो हम भक्तों को उनके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी कृपा प्राप्त हो कि हमारे हृदय में भी भगवत प्रेम आए। ये जो नुक्स निकालने की आदत होती है जो आप देखते हो रामचंद्रपुरी के चरित्र में, ये आदत बहुत खतरनाक है। पहले तो रामचंद्रपुरी ने नुक्स निकाला किसमें, सन्यासी हो जगदान पंडित, फिर ईश्वरपुरी में भी नुक्स निकाला, फिर अपने गुरु के भी कमजोरियों को वो कमजोरी पैदा कर रहे थे। एक दिन रामचंद्रपुरी गए महाप्रभु के कमरे में और उस समय गर्मी का मौसम था तो पूरे फर्श में चीटियां चल रही थी। तो रामचंद्रपुरी ने सोचा जरूर क्या है सन्यासी ने मीठा खाया होगा जिसके कारण ये चीटियाँ यहाँ चल रही है. तो उन्होंने कहा लगता है हमारे सन्यासी को मीठा मीठी चीज़ें खाने का शौक है. तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी गंभीरता के साथ इसे स्वीकार किया. चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सन्यासी के चरित्र में बिल्कुल कलंक नहीं होनी, कमी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने उदाहरण दिया एक सफ़ेद चादर में अगर एक दाग हो तो दाग दूर से भी दिखता है. उसी प्रकार उन्होंने कहा सन्यासी के आचरण में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए. और बिल्कुल कभी जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना ये जो आरोप रामचंद्रपुरी लगा रहे हैं तो उन्होंने अपने सेवकों से कहा अब मुझे जो प्रसाद तुम देते हो उसका चौथा हिस्सा देना बस. तो यही रामचंद्रपुरी इतने अपराधी बन गए कि अंत में उनके गुरु ने क्या कहा निकल जाओ महीना जो से दूर. तो हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए. हरे कृष्ण. हमने पूरी तिरुभावती देखी. तो आज का श्लोक है सातवां स्कंद तीसरा अध्याय 28 नाम ओके पढ़ो 7-3-29
जीवन के उपलब्ध होने से चल तथा अचल दोनों प्रकार के जीवों के स्वरूप तथा नियमता है और उनकी चेतना को अभिप्रेरित करते रहते हैं। आप मन और इंद्रियों का संपोषण करते हैं जबकि उनका समस्त भौतिक तत्वों तथा उनके गुणों के महान नियंता है। आप समस्त कामनाओं के भी नियंता है। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित किया गया है कि प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत जीवन है। ब्रह्मा को परम पुरुष श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। कृष्ण परम जीव है, नित्य नित्यानंद चेतन और ब्रह्मा भी जीव है, लेकिन ब्रह्मा के मूल स्रोत श्री कृष्ण है। अगर गीता साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रतिनिधि है। कृष्ण के सारे गुण तथा काच कला ब्रह्मा जी में भी पाए जाते हैं।
अनुवाद हो रहा है,
आप भी इस भौतिक जगत के जीवन के उद्गम होने से चल तथा अचल दोनों प्रकार के जीवों के स्वामी तथा नियंता है। अभिनंदित करते रहते हैं मन और कर्म तथा ज्ञान की इंद्रियों का संपोषण करते हैं। आप समस्त भौतिक तत्वों तथा उनके गुणों के महान नियंता है। आप समस्त कामनाओं के भी नियंता है।
चौबीस अध्याय में आप पढ़ रहे हो कि हिरण्यकश्यपु का क्या प्रयास था सनातन बनने के लिए। हिरण्यकश्यपु और हिरण्यक्ष अगर हम आपसे पूछे क्या है उनका परिचय, आप क्या कहोगे? असुर। पर असलियत ये थी कि दो थे भगवान के बड़े प्रिय भक्त। जब कुमार आज विश्व का भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने फिर प्रवेश किया वैकुंठ धाम में, और जैसे उन्होंने प्रवेश किया वैकुंठ धाम में उन्हें इतना आनंद आया कि उन्हें लगा कि ऐसा आनंद हमने कभी अनुभव नहीं किया। और भगवान के छह द्वारों से वो गुजर गए थे, पर जब वो सातवें द्वार में पहुंचे तो जो भगवान के द्वारपाल थे चौकीदार उन्हें रोक दिया। ए तुम नंगे बच्चे, ऐसे कैसे जा सकते हैं अंदर? और कुमारस को इतना आनंद आ रहा था, उन्होंने कहा तुम कौन होते हो हमें रोकने के लिए, तुम योग्य नहीं हो ये द्वारपाल की सेवा करने के लिए। और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। भगवान को पता था क्या लीला बीत रही है, और जब भगवान ने ये सुना ये चर्चा तो वो उधर पहुंच गए और कहा, और जब कुमार ने देखा कि भगवान इतने स्नेह के साथ द्वारपालों से बात कर रहे हैं तो उन्हें लगा कि हमने गलती कर ली है, और उनकी इच्छा थी श्राप को वापस लेने के लिए। तो फिर भगवान ने कहा नहीं, ये मेरी इच्छा है कि ये भौतिक जगत में जाएं, क्योंकि भगवान आने लगे थे लीला प्रकट करने के लिए। और ये द्वारपालों ने क्या कहा, आप जो सजा देना चाहते हो दे दो, केवल हमें ये वर दीजिए कि हम कभी भी भगवान को भूले नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा हमें श्राप मत दो, उन्होंने कहा जो सजा देने दो पर उसके साथ एक ये वर्ड चाहिए कि हम सदा आपका स्मरण कर सकें। ये होनी चाहिए हम सबकी इच्छा। भक्ति रसामृत सिंधु में रूपा गोस्वामी ने अनेक नियम दिए हैं और पर ऐसा वर दीजिए कि हर जन्म में आपका स्मरण कर सकें। तो ये होनी चाहिए हमारी इच्छा भी। और उन्होंने कहा आपने हमें असुर बनाना है वो भी ठीक है, पर ऐसा वर दीजिए कि भगवान का स्मरण कर सकें हमेशा, कभी भगवान को भूले नहीं। तो हिरण्यकशिपु इस अध्याय में बड़ी गहरी तपस्या कर रहे हैं। उनकी इच्छा थी क्या कि मुझे ऐसा वर प्राप्त हो कि कभी मृत्यु के सामने मुझे झुकना नहीं पड़े। और हिरण्यकशिपु उन्हें ये भी पता था कि जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे ये सुविधा भी प्राप्त नहीं होगी। हिरण्यकशिपु बड़ी गहरी तपस्या कर रहे थे और हिरण्यकशिपु देवताओं के 100 वर्षों के लिए उन्होंने एक बूंद पानी का नहीं पिया। आप लोग एक दिन निर्जल रखते हो एक साल में एक दफा, वो सोचते हो कि बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है, पर हिरण्यकशिपु में इतनी शक्ति थी कि मनारा पर्वत में अपने टोज अंगूठे पर खड़े होकर आकाश की तरफ हाथों को उठाया और वो जुड़े हुए थे क्या भगवान के चिंतन में। उनका पूरा शरीर चींटियों से भर गया था, कीड़ों से भर गया था। आपके सिर में, चेहरे में, शरीर में एक मक्खी एक सेकंड के लिए बैठती है तो आपको क्या लगता है बगावे से। पर हिरण्यकशिपु देवताओं के 100 सालों के लिए, हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर है, तो देवताओं के 100 सालों के लिए उन्होंने एक बूंद जल खरीद लिया। और इनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि पूरे पृथ्वी में आग लग रही थी, इधर धुआं आ गया था। तो देवताओं ने कहा ये तो बड़ा कठिन है, इतने हिरण्यकशिपु की तपस्या का ये परिणाम। तो देवता गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। देवता गए ब्रह्मा जी के पास और उन्होंने कहा हमारा जीना कठिन हो गया है हिरण्यकशिपु की तपस्या के कारण। ब्रह्मा ने कहा घबराओ मत, मैं जाता हूँ हिरण्यकशिपु के पास। तो ब्रह्मा जी आए अपने साथियों के साथ खोजने के लिए, हिरण्यकशिपु कहाँ है, तो मैं इसी तपस्या जाके रोकूं। और ब्रह्मा जी अपने हंस से नीचे उतरे, वो खड़े थे वहाँ जहाँ हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या कर रहा था, पर वो पहचान नहीं पाए क्योंकि उनका पूरा शरीर चींटियों ने कीड़ों ने खा लिया था, तो क्या बची थी केवल हड्डी। फिर ब्रह्मा ने कहा ओह ये यहाँ है। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल फेंककर उनको युवक, खूबसूरत युवक बता दिया। तो हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे, वो गए ब्रह्मा जी के पास, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे कभी भी मृत्यु के सामने झुकना नहीं पड़े। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा, मैं वर तुम्हें कैसे दूं, मुझे भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ता है। ब्रह्मा जी की आयु लंबी है पर ये नहीं कह सकते कि सनातन है। तो हिरण्यकशिपु ने कई तरीकों से यही वर इंडियन क्रास से प्राप्त किया और ये सोच रहे थे अब मैं मृत्यु से बच जाऊंगा। तो इन श्लोकों में ब्रह्मा जी का वर्णन किया जा, गुणगान किए जा रहे हैं, यानी कश्यप ने ब्रह्मा जी के पास आए, उनसे ये वर मांगे, और ब्रह्मा जी के अनेक गुणों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। यहाँ क्या किया जा रहा है? तो ब्रह्मा जी जो हैं नियंत्रक हैं, और वो सृष्टि को मेंटेन करते हैं। तो लॉर्ड ब्रह्मा जो हैं, अनेक ब्रह्मा हैं। पिछले श्लोक में आप पढ़ते हो कि जब चार शेर वाले ब्रह्मा जी, ये असल में सबसे छोटे ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा इज अ पोत, जैसे कि किसी मंदिर में टेंपल प्रेसिडेंट होता है, किसी देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी इज ऑल्सो पोत। तो ब्रह्मा जी गए थे भगवान को मिलने द्वारका में, और जब वो द्वारका गए तो ब्रह्मा जी को ने सूचना भेजी चौकीदार के द्वारा, ब्रह्मा जी आए हैं भगवान का दर्शन लेने। जैसे आप किसी बड़े आदमी को मिलने जाते हो, अपना कार्ड भेजते हो कि कौन है, तो जब पूछा भगवान से, ब्रह्मा जी आपको मिलने आ सकते हैं, भगवान ने पूछा कौन से ब्रह्मा, करोड़ों ब्रह्मा हैं, कौन से ब्रह्मा मुझे मिलना चाहते हैं? तो भगवान के सेवक ने आकर ब्रह्मा से पूछा, भगवान पूछना चाहते हैं आप कौन से ब्रह्मा हो? तो ब्रह्मा हैरान हो गया, मेरे अलावा और भी है कौन? तो जब ब्रह्मा जी गए भगवान के पास, ब्रह्मा जी जाते भगवान के पास रिपोर्ट देने, तो उन्होंने रिपोर्ट दी और फिर पूछा, एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे? उन्होंने कहा हाँ, मेरे अलावा और ब्रह्मा भी हैं इस पृथ्वी पर? तो उन्होंने प्रश्न पूछना समाप्त भी नहीं किया, जबकि उसी स्थान में लाखों ब्रह्मा उपस्थित हो गए तुरंत। और ब्रह्मा ने देखा कि जो दूसरे ब्रह्मा हैं, कई उनके लाख सिर थे, कई उनका करोड़, और उन्होंने देखा वो तो इन सब ब्रह्मा में सबसे छोटे हैं, चार सिर वाले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी समझ पाए भगवान की महान शक्ति के ऊपर। तो ब्रह्मा जी भी हमेशा क्या करते हैं? पर भगवान का गुणगान। हम ब्रह्मा संहिता पढ़ते हैं, ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि परम भगवान कौन है? भगवान जी कह रहे ईश्वर पारमा कृष्ण सचिदानंदा राधे राधे गोविंदा। अनेक ईश्वर है पर एक ही परमेश्वर है, वो है हर चीज का कारण। अब भगवत में दसवें स्कंद में भगवान के अनेक लीलाओं के विषय में पढ़ते हो। कई बार देवता भगवान की परीक्षा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा संहिता में क्या करें? परम भगवान का गुणगान करें। ईश्वर पारमा कृष्ण, अनेक ईश्वर है पर सबसे प्रसिद्ध कौन है? कृष्णा, कृष्णा त्यू भगवान स्वयं, आप ही हो हर चीज के कारण। तो ब्रह्मा जी और जो दूसरे देवता है, वो कभी ये नहीं कहते कि वो परम भगवान के समान है। वो यही जानते हैं कि ईश्वर परमा कृष्णा, यानी कि ईश्वर है पर परमेश्वर कौन है? परम भगवान है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान के अनेक गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, आप जो हो अद्वैता हो, आपके देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं। अच्युतम, अच्युतम का क्या अर्थ है? जो कभी गलती नहीं करता। अनंत रूपम, भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करता है। भगवान अपने आप को नरसिंहदेव जी के रूप में प्रकट किया, आधे पुरुष आधे पशु। तो भगवान के लिए कोई खड़े असंभव है। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो उनकी शक्ति भी आती है कहाँ से? परम भगवान से। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो वर देवता दे रहे हैं वो वर किससे आ रहा है? किसे? मेरे से आ रहा है। तो क्या करो? मेरी पूजा करो। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो हर चीज के कारण है, पर उनकी शक्ति जो है वो प्राप्त होती है किससे? परम भगवान के द्वारा। अद्य पुराना पुरुषम नव यौनम चा, भगवान के अनेक गुणों के का गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? अद्य पुराना पुरुषम, आप हो सबसे प्राचीन, और आप देखते हो कैसे युवक जैसे। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र सब क्या करते हैं? परम भगवान का गुणगान करते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने पहले तो तपस्या की इस भाव से कि वो सनातन हो जाए, ये थी उनकी हार्दिक इच्छा। और जब ब्रह्मा ने कहा मैं ये वर कैसे दूं, क्योंकि मुझे भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ता है। ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी है, 311 trillion 40 million वर्षों की है। और तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा मैं ये वर तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? और हिरण्यकश्यप ने क्या सोचा, मुझे इनडायरेक्ट तरीकों से यही उद्देश्य प्राप्त करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप मुझे ये वर नहीं देना चाहते कि मैं मृतक से पशु, ऐसा वर दीजिए ना मैं मृत्यु होगी कब, ना सुबह ना रात को, ना सागर में, ना हवा में, ना पृथ्वी पे, और ना पशु के द्वारा, क्योंकि उनके भाई की कवच हुआ था वरहा के द्वारा। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सारे वर प्राप्त कर लिए, उन्होंने क्या सोचा अब कोई कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे वही उद्देश्य प्राप्त हुआ। तो जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा ही है, भगवान ने देखा हिरण्यकशिपु अपने निर्दोष बालक पर इतना क्रोधित है। भगवान जो थे उनके भक्त थे, तो भगवान ने देखा ये हिरण्यकशिपु अपने बेटे का शत्रु बन गया है। क्यों? क्योंकि शत्रु बने, क्योंकि प्रहलाद किनका उपासक था? परम भगवान का। और उनके भाई का, हिरण्यकशिपु का भाई का वध हुआ था भगवान के हाथों में। तो जो भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव के रूप में, और क्या हुआ उसके द्वारा? हिरण्यकशिपु का वध हुआ। तो प्रभा जी लेक्चर दे रहे थे इस लीला के ऊपर, और प्रभा जी ने कहा कि भगवान ने हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात कहा तुम आगे से ऐसा वर मत दिया करो, तुम्हें मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया था। अब देखते हो एक रूप से हिरण्यकशिपु ने इतने वर प्राप्त कर लिए थे कि मृत्यु से वो बच सकते थे। भगवान ने ब्रह्मा के सारे वरों का पालन किया, और क्या किया? हिरण्यकशिपु का वर। तो परम भगवान जो है हर चीज के कारण है। और प्रहलाद महाराज ने शिक्षा का प्राप्त की थी, उन्हें एक शिक्षा प्राप्त की थी जब वो थे माता के घर में। जब माता के घर में थे हिरण्यकशिपु बनारा पर्वत गए थे तपस्या उठाने के लिए, तो जो देवता थे उन्होंने सोचा एक हिरण्यकश्यपु ने हमारा जीना इतना कठिन बना दिया है, और उनका बेटा वो भी अगर असुर निकले तो यहाँ रहना असंभव हो जाएगा। तो नारद मुनि ने कहा देवताओं से, इस और निर्दोष औरत को क्यों घसीट कर ले जा रहे हो, इसके घर में क्या है, भगवान संत है। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा जो हम पढ़ते हैं, ये शिक्षा सातवें स्कंद में जो है ये उन्होंने प्राप्त की थी जब वो माता के घर में थे। जब प्रहलाद महाराज माता के घर में थे जब उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त की, माता भूल गई पर जो प्रहलाद है वो नहीं भूले। तो भौतिक जीवन में आप देखते हो कि लोग फिल्मी कलाकार, राजनीतिक नेता, खिलाड़ी उनको अपना हीरो बनाते हैं, उनकी तस्वीर को अपने कमरों में रखते हैं, पर भक्तों के लिए कौन है हीरो? प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, चैतन्य महाप्रभु उनके भक्त, जो आध्यात्मिक चर्चा करते थे गोपियों के विषय में नहीं, वो करते थे किसके विषय में? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। उनके उनके आचरण से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमें भगवान के शरण लगा होना चाहिए। प्रहलाद महाराज को अपनी भक्ति के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर प्रहलाद महाराज ने तपस्या का पालन किया। शक्ति कहाँ से आई? परम भगवान के द्वारा। और प्रहलाद महाराज का क्या था उपदेश? कौमर आचरण प्राज्ञ धर्म भगवतम ज्ञान। हमको आध्यात्मिक ज्ञान 5 साल की आयु से अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। भगवान ने प्रहलाद को कहा, प्रहलाद मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा था, और मांगो मेरे से क्या वर चाहिए तुम्हें, मांगो। तो प्रहलाद ने कहा मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता, जो स्वामी अपने सेवक से सौदा करे वो कौन है? व्यापारी। मैं अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं हो। उन्हें क्या कहा? अगर मुझे वर देना ही चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं हो। और ये होती है भक्ति इच्छा। अगर हम भगवान से वर मांगना भी है तो क्या वर मांगे? कि भौतिक इच्छाओं को आप वश में ला सको। जैसे कि ध्रुव महाराज से भी भगवान ने कहा था, हे ध्रुवा मेरे कारण तुमने इतनी तपस्या उठाई, भागो मुझे क्या वर चाहिए? ध्रुवा ने कहा अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए क्या कि मैं उत्तम भक्तों की संगत में रह सकूं, ये वर मांगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि होना चाहिए हमारा भाव कि अगर भगवान वर देना चाहते हैं वैसा वर दीजिए क्या जिससे भौतिक आकर्षण नष्ट हो जाए। तो ये है शुद्ध भक्ति का उपदेश। तो हिरण्यकशिपु जैसे हमने आरंभ में कहा, साधारण व्यक्ति सोचता है ये तो असुर थे, अपने निर्दोष बेटे को इतना कष्ट दिया, पर हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या उठाई थी इसका उद्देश्य क्या था? तपस्या उठाई थी उद्देश्य था कोई वर प्राप्त हो। तो असुरों का तो जो असुर भाव के व्यक्ति है वो जानते हैं कि अगर हमें भौतिक इच्छा भी पूरी करनी है तो हमें क्या यज्ञ करना पड़ेगा. पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन थे पूर्व जन्म में, जय और विजय, और उन्हें छूट दी थी 7 जन्म लो और या 3 शत्रु के रूप में. और क्योंकि उस लीला में वो सदा भगवान का स्मरण करेंगे. तो ये होनी चाहिए हमारी इच्छा कि हम भौतिक आकर्षण से बचे. और क्या है उपाय? प्रहलाद के पिता ने एक दिन पूछा बेटे से, प्रहलाद मुझे बताइए जो तुम पाठशाला में पढ़ते हो कौन सा विषय है सबसे महत्वपूर्ण. तो प्रहलाद ने कहा शवरम कितने विष्णु स्मरण पाद सेवनम अच्छा वंदन दर्शन सख्यम आत्मनिवेदन. तो ये जो नवदा भक्ति का ज्ञान जिसे आप सब परिचित हो, ये ज्ञान सबसे पहले भगवान ने प्रहलाद को दिया था, नारद मुनि ने प्रहलाद को दिया था. और ये ज्ञान प्रहलाद ने पिता को सुनाया. तो ये जो नवदा भक्ति का ज्ञान है, ज्ञान होता है किससे? शरणम कीर्तनम से. तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि शरणम कीर्तनम में हम जुड़े. और शरणम कीर्तनम में जुड़ोगे तो क्या लाभ होगा? आप चैतन्य दर्पण मानना. आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है शरणम कीर्तनम के साथ. तो आज महान संत ईश्वरपुरी का तिरुभाव तिथि है. जब हम संतों की अविर्भाव तिथि और तिरुभाव तिथि को मनाते हैं, हमें इन संतों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो कि हम भी भगवान की शरणागत हो सकें. और ये संभव होगा कैसे? शरणम कीर्तनम के माध्यम से. शरणम कीर्तनम करोगे, हृदय की मैल निकलेगी और आप असली आनंद अनुभव कर सकोगे. तो प्रहलाद महाराज ने पिता को क्या कहा? नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया. और जब पिता ने ये सुना, क्या किया? बेटे को अभी गोद में रखा था, नीचे फेंक दिया. तो ये है असुरों का भाव. तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा में आप देखते हो उन्हें अनेक कठिन स्थितियों में उनके पिता ने डाला, तो भगवान ने हमेशा उनकी सुरक्षा की. तो ब्रह्मा जी सृष्टि के एक रूप कह सकते हैं, निर्माण करते हैं. ब्रह्मा जी का सारा ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान के द्वारा. और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? गोविंद आदि पुरुषम माँ हम जाने. गोविंद जो है वो पहले इंसान. तो ब्रह्मा जी भगवान के उत्तम कोटि के भक्त हैं. और उन्होंने क्या शिक्षा दी है? यही कि कृष्ण भगवान परम भगवान है. तो आज के श्लोक में ये स्थापित हो रहा है कि कृष्ण भगवान परम भगवान है. और तात्पर्य में प्रभु जी क्या कहते हैं, वो इस पर से श्लोक की चर्चा करते हैं. नित्य नित्य नाम चैतन्य चैतन्य नाम एक बिलाधिकम. हम नित्य हैं, भगवान में नित्य है, पर अंतर क्या है? वो नित्य दूसरे नित्य को संभाल रहा. तो ये है श्रीमद् भगवतम का निर्णय कि कृष्ण थे भगवान स्वयं और ब्रह्मा जी और अनेक देवता सब ये स्थापित करते हैं क्या कि कृष्ण भगवान परम भगवान है. कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. तो ईश्वरपुरी से प्रार्थना कीजिए कि आप उनकी कृपा प्राप्त हो कि हम भी दृढ़ होकर भगवान की भक्ति कर सकें. जैसे प्रहलाद महाराज दृढ़ हो गए थे. हम जब भक्ति करते हैं थोड़ी समस्या आती है, हम घबरा जाते हैं. पर प्रहलाद महाराज, आपको अंदाजा है क्या किस प्रकार का कष्ट उन्हें सहना पड़ा? पहाड़ की चोटियों से फेंका प्रहलाद महाराज को, जहरीले सांपों ने घेरा, हाथी चले उन पर, जब भी भगवान ने उनकी सुरक्षा की. राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के. तो हिरण्यकशिपु वैसे असुर मानते हैं, वो थे भगवान के उत्तम कोटि के भक्त. जिनके हृदय में एक ही इच्छा थी क्या भगवान की लीलाओं को और मधुर बनाना. तो ये जो असुर है जिनके पीछे में आप दसवें स्कंद में पढ़ते हो, वैसे तो हम कहते पुतला राक्षसी सब, पर वो है ऐसा में सब भगवान के भक्त, और वो प्रकट होते हैं भगवान की लीलाओं को और मधुर बनाने के लिए. और ब्रह्मा जी सब भक्तों में सबसे प्रसिद्ध हैं. तो हमें ईश्वरपुरी और महानाचार्यों से ये भीख मांगनी चाहिए कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो कि हम दृढ़ होकर उनकी सेवा में जुड़ सके, ये होना चाहिए हमारा भाव. और भक्ति में उन्नति करने के लिए क्या सबसे आवश्यक है, शौरम और कीर्तन. तो शौरम कीर्तन हम सब भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है. और वृंदावन धाम में और चाहे किधर भी हो, शौरम कीर्तन इज द मेन कॉज. शौरम कीर्तन पैदा करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, और शौरम कीर्तन कमजोर होगा तो फिर भक्ति में भी आप आगे नहीं बढ़ सकोगे. तो हमारा दृढ़ भाव होना चाहिए कि शौरम कीर्तन हम करें, ध्यान से करें, और शौरम कीर्तन करोगे तो विष्णु स्मरण भी संभव होगा, जो कि आवश्यक है अगर आप भगवान की शरणागत होना चाहते हैं. और साधु संगत में रहना वो भी बहुत आवश्यक है. चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक और सूचना दी है, अपराधों से हमें बचना चाहिए. आपने रामचंद्रपुरी की कथा में देखा, रामचंद्रपुरी अपराधी बन गए थे, पहले एक सन्यासी के प्रति, फिर गुरु के प्रति, महाप्रभु के प्रति, और इसका क्या परिणाम हुआ, गुरु की रंजन से दूर हो गया और वैष्णव की संगत से जुदा कर दिया. तो वैष्णव अपराध से हमें सावधान रहना चाहिए और वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, और अगर प्रयास करोगे तो भगवान भी सहयोग देंगे. प्रभुपाद सर, यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू. तो हमें भगवान की लीला में रुचि लेनी चाहिए और इस प्रकार भक्ति में भगवान आगे बढ़ सकोगे, भगवान की शरणागत हो पाओगे. हरे कृष्ण. ओके, दो तीन मिनट प्रश्न है कोई? We're actually late. क्या प्रसाद खाते हैं लोग? प्रसाद I'm sorry. उन्होंने भगवान की परीक्षा ली थी और उस लीला के द्वारा आपने क्या देखा कि ये भगवान के साथियों को गौरव गौर ने किडनैप कर लिया था, भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, विस्तार कर लिया उसी रूप में. और इस प्रकार जो ग्वाले थे, गोपियन थे, उन सबकी भी इच्छा थी कि हमारे हमें भी एक बेटा प्राप्त हो इन भगवान जैसे. भगवान ने ये इच्छा भी पूरी की क्योंकि भगवान ने अपना विस्तार किया, जिसके द्वारा जो घर गए सब ग्वालों के साथ थे. तो माताओं को मौका मिला बेटे की देखभाल करने के लिए, ये उनकी इच्छा थी. No. You know, people are waiting for prasad.
So, Guru Maharaj, I have a question. I have a compliment.
Yeah.
You said
We are not comparable to Prahlad Maharaj and Rama. We should not be in any illusion.
He's
the smallest. God has innumerable universes. And this universe where we reside is the smallest of all. What is it?
She is saying that Chaturmukh Brahma ke vichar ved hai, jo sahasra Brahma unke sahasra ved
hai. You have thousand-headed Brahmas. God's creation is so big, you can't estimate with the material senses. This universe is just like one grain in a bag of mustard seeds. You have a bag full of mustard seeds and one grain is anything. So, Rama got really humbled when he went to Dwaraka and he saw, oh, all these Brahmas are much bigger. It gives you an idea how vast the Lord's creation is. You stop now?
Yes.
Aaj are late ho gaye. Is it Prashad ke liye baitha? Okay. Okay. Any more? Okay. Hare Krishna.